हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 155। इतना बोलते हुए वो चुप हो गई, अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। करण ने उससे कहा, क्या? लेकिन तुम क्या? करण की बात सुनकर मीरा ने इस बार काफी गंभीर होकर उसकी तरफ देखा और बोली, एक बात बताओ, वो सच में तुम्हारी बॉस ही थी ना, कोई और तो नहीं? मेरा मतलब है, तुम दोनों बॉस और एम्प्लॉय नहीं लगते, बिल्कुल भी। कुछ और भी चल रहा है ना तुम दोनों का? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना करण, साफ नजर आ रहा है। मीरा ने एकदम सीधे सवाल पूछा। उसकी बात पर करण सकपकाते हुए बोला, क्या क्या कह रही हो तुम? ये सब बॉस और एम्प्लॉय नहीं लगते मतलब क्या लगते हैं फिर? वैसे तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो मीरा, और फिल्में कम देखा करो। इतना बोलते हुए करण ने मीरा के सिर पर हल्के से मारा। मीरा उसकी बात पर एकदम सीरियस होते हुए बोली, आई एम सीरियस करण, और मैं कोई फिल्म देखकर ये सब गैस नहीं कर रही हूँ। मुझे साफ नजर आ रहा है जिस तरह से वो तुम्हारी केयर करती है, और तुम भी उसका नाम लेकर बात करते हो। सीरियसली, कौन सा असिस्टेंट है जो अपनी बॉस का नाम लेकर बात करता होगा, बताओ मुझे? मुझे तो अपने बॉस का नाम पता भी नहीं है, और तुम तो अपनी बॉस के साथ घूमते हो, इसका मतलब कुछ तो स्पेशल होगा ना? अब तुम बताना ना चाहो तो अलग बात है। इतना बोलते हुए मीरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और थोड़ा आगे बढ़ गई। उसकी बातें सुनकर करण वहीं चुपचाप खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आज पहली बार मीरा उसे और शिविका को साथ में देख रही है, और उसे इतना सब कुछ समझ आ गया है। वो इस बारे में गंभीर होकर सोचने लगा कि क्या सच में वो दोनों अपने रिलेशन को लेकर इतने ज्यादा ऑब्वियस हैं। और ये सोचते हुए वहां खड़े करण ने अपने मन में कहा, मीरा की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं और शिविका, हम दोनों ही बहुत लापरवाह हैं, हमने जरा सा भी ध्यान नहीं रखा। और अगर मीरा ने इतना कुछ नोटिस किया है तो उस इंस्पेक्टर ने भी कुछ तो नोटिस किया होगा, और कहीं इन सब से वो हम पर ही उल्टा शक ना करने लगे। ये सब सोचते हुए करण थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने मीरा को वहां से आगे जाते हुए देखा। पीछे से आवाज लगाकर उसे रोकते हुए बोला, मीरा मीरा कहाँ जा रही हो? रुको, यहाँ पर ही कैब आने वाली है, मैंने यहीं की लोकेशन डाली है, कहीं जाओ मत। इतना बोलते हुए उसने मीरा को आवाज लगाई। मीरा अपनी जगह पर रुक गई और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। इतना बोलकर करण की तरफ देखते हुए वो अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ी। तभी साइड से आती हुई एक बाइक उसके एकदम नजदीक से बहुत तेज स्पीड में निकली, जिसकी वजह से वो बाइक शायद थोड़ी सी मीरा से टच भी हो गई। इतनी स्पीड से निकलने की वजह से मीरा के शायद हाथ में कुछ चोट लग गई और वो वहीं जमीन पर गिर गई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इस वक्त मीरा का ध्यान सामने की तरफ नहीं था, वो पीछे देखकर करण से बात कर रही थी, और उसी बीच वो बाइक एकदम साइड और उसके बगल से तेज स्पीड में निकली, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट लगभग होते होते बचा। उसे इस तरह देखकर करण तेज आवाज में चिल्लाया, मीरा! और इतना बोलते हुए करण मीरा की तरफ भागा, जो जमीन पर गिरी हुई थी। करण ने आगे आते हुए जल्दी से मीरा को उठाया और उसका हाथ पकड़कर देखते हुए बोला, पागल है क्या यार तू, ध्यान कहाँ रहता है तेरा, मैं रोक रहा हूँ फिर भी? उसकी फिक्र में करण ने उसे काफी डांटते हुए ये बात कही। फिर मीरा ने मुंह बनाते हुए बोला, तेरी वजह से ही हुआ है, तेरी रोकने की वजह से ही। उसकी ये बात सुनकर करण ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और फिर अपना एक हाथ माथे पर रखते हुए बोला, अरे तो क्यों, जा ही क्यों रही थी उस तरफ, और तेरा ध्यान कहाँ रहता है, अब दिखा कहाँ चोट लगी? इतना बोलते हुए उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अलट पलट कर देखने लगा। उसके हाथ पर हल्की सी खरोच आई थी, शायद जमीन में गिरने की वजह से। उसके हाथ पर लगी हुई चोट देखकर करण ने फिर से उसे डांटते हुए कहा, पागल है तू पूरी, अपना ध्यान भी नहीं रख सकती, पता नहीं काम कैसे करती है और रोज आती जाती कैसे है। उसके इस तरह से डांटने पर मीरा ने कहा, मैं कोई पागल नहीं हूँ ओके, और ये बस एक एक्सीडेंट था, जो किसी के साथ भी। वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही करण ने उसे घूर कर देखा और कहा, ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपस में बात करते हुए वो दोनों वहां सड़क के किनारे पर खड़े हुए थे, तभी उन्हें वहां से थोड़ी दूर पर एक कैब आकर रुकती हुई नजर आई। उस कैब को देखकर करण समझ गया कि वो जरूर उसकी बुलाई हुई कैब है। वो मीरा को साथ लेकर उस कैब के नजदीक आया और फिर वो दोनों वहां कैब के अंदर बैठ गए। कैब के अंदर बैठे हुए वो दोनों जो कुछ भी आज हुआ उसके बारे में बात कर रहे थे। मीरा ने उससे केस के बारे में पूछा तो करण ने उसे थोड़ी बहुत बात बता दी, क्योंकि पूरी बात तो अगर करण उसे बताता फिर भी शायद मीरा को समझ न आती। इसके बाद करण ने मीरा से वहां इवेंट हॉल में पार्किंग एरिया में होने वाली बात को लेकर सवाल किया। मीरा ने करण को भी वही बात बताई जो उसने जय को बताई थी। फिर पूरी बात बताने के बाद वो बोली, यार वो आधे घंटे के लिए वहां पर जाना मुझे इतना भारी पड़ेगा तो मैं कभी भी वहां पर नहीं जाती। सच में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वहां पर और क्या चल रहा है उस पार्टी एरिया में। करण ने उसे समझाते हुए कहा, अरे लेकिन मैंने तुम्हें श्योरिटी दी है ना कि अगर तुम इन सब में शामिल नहीं हो तो फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो बस तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पहले ही पूरा भरोसा था, तुम्हें सब कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन बस ये पता करना है कि तुम्हें वहां पर जानबूझकर भेजा गया या फिर सच में वो सभी कोइंसिडेंस ही था। मीरा ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, हाँ वो इंस्पेक्टर भी वही कह रहा था, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी बात मानकर वहां पर क्यों आ गया था, क्या वो तुम्हें पहले से जानता है? करण ने जवाब दिया, अरे हाँ वो कॉलेज में मेरा सीनियर था, एक दो बार देखा था मैंने उसे, लेकिन तब हमारी इतनी बात नहीं होती थी और फिर एक केस के चलते हम दोनों मिले थे कुछ दिन पहले, तब से ही बस दोस्त हैं, ऐसे समझ लो। मीरा ने एक झटके से गर्दन घुमाकर करण की तरफ देखा और बोली, क्या वो भी सेम कॉलेज में था क्या? शायद इसीलिए वो मुझसे कॉलेज के बारे में भी सवाल कर रहा था और मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। कॉलेज वाली बात सुनकर करण ने भी अपनी आंखें छोटी करके कन्फ्यूजन से मीरा की तरफ देखा और बोला, कॉलेज वाला कौन सा सवाल, क्या पूछा था उसने तुमसे? करण के पूछने पर मीरा ने इस बारे में भी उसे बता दिया, तो करण को कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगी। और फिर कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर वाले एरिया में पहुंच गए हैं, जहां पर मीरा का घर उसके घर से थोड़ा पहले था। कैब के रुकते ही मीरा वहां पर उतरी। उसके उतरते ही करण ने अंदर बैठे हुए चिल्लाकर कहा, ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना, और चोट ज्यादा हो तो बैंडेज करवा लेना डॉक्टर से। उसकी बात सुनकर मीरा हल्का सा मुस्कुराई, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा भी चोट नहीं आई है। इतना बोलते हुए वो वहां से घर के अंदर चली गई। करण ने टैक्सी वाले को और आगे उसके घर तक चलने के लिए कहा। काफी बड़ा सा शानदार बना हुआ ऑफिस कैबिन।
किसी काम के नहीं हो तुम लोग, उसको ये सब कुछ पता कैसे चला? ये सब कुछ तो हमने इतनी चालाकी से किया था, फिर भी इसका मतलब तुम्हारी बनाई हुई ज्वेलरी बेकार है, जो कि उन लोगों ने हमें उसी वक्त पकड़ लिया। वो तो अच्छा है कि मैं अब तक उनके हाथ नहीं लगा। एक ब्लैक सूट पहने हुए आदमी ने अपने सामने सिर झुकाकर खड़े तीन चार लोगों पर लगभग चिल्लाते हुए कहा। वो आदमी उन सबकी तरफ चेहरा करके खड़ा हुआ है, जिससे उन लोगों के लटके हुए चेहरे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उस आदमी की सिर्फ पीठ नजर आ रही है। लेकिन उसकी बात से ही पता चल रहा है कि वो किसी बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है।
सॉरी सर, बट चाहे हम जितना भी ट्राई कर लें, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क तो होता ही है, और वो फर्क एक्सपर्ट आसानी से समझ लेते हैं। सामने खड़े उन चार लोगों में से बीच वाले ने अपनी सफाई में बोलने की हिम्मत की। उस आदमी ने फिर से उस पर चिल्लाते हुए कहा, हाँ ठीक है, बस यही एक बहाना है ना तुम लोगों के पास अपनी जान बचाने का, तो उसे भी यूज कर लो। लेकिन अगर सच में मेरा नाम सामने आया ना, तो फिर तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी नहीं। इतना बोलते हुए उस आदमी ने उन सबको उंगली दिखाकर वार्निंग दी और उन सबके चेहरे वापस से नीचे हो गए। अपने बॉस को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उनमें से किसी और ने कुछ भी बोलने या सफाई देने की हिम्मत नहीं की। पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर जय अपनी तरफ से सब कुछ पता करने की कोशिश कर रहा था। इन सब में जो कुछ भी उसे पता चल रहा था, वो सब कुछ जानने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब तक जो भी पता कर रहे थे और जिसके भी पीछे थे, वो बिल्कुल ही गलत रास्ता है। कोई जानबूझकर उन लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। उसने जानबूझकर ही सारे सबूत इस तरह से प्लान किए गए थे जिससे कि एक आदमी पर पूरा इल्ज़ाम आए और बाकी सारे लोगों पर से ध्यान हटा रहे। लेकिन उसे आदमी के इतना ज्यादा प्लान करने के बाद भी जय ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस बारे में भी पता लगा लिया था। वो सब कुछ पता करते हुए जय ने अपनी टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, यस दैट्स इट, मुझे पता था ऐसा ही कुछ निकलेगा, क्योंकि जो कुछ भी सामने दिखता है वो कभी भी सच नहीं होता, जो सच होता है वो कभी खुद से सामने नहीं आता, उसे तो इसी तरह खोद कर निकालना पड़ता है। ये बात उसने थोड़ी ज्यादा खुश होते हुए कही, तो उसके पीछे खड़े कांस्टेबल ने कहा, इसका मतलब केस सॉल्व हो गया है क्या सर? उस कांस्टेबल का ये सवाल सुनकर जय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ ऐसा ही समझो कि ऑलमोस्ट तो सब सॉल्व हो गया है, बस थोड़ा सा कन्फर्मेशन चाहिए मुझे और फिर उसकी गर्दन होगी मेरे हाथ में। इतना बोलते हुए जय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपना मोबाइल फोन निकालकर पहले उसमें किसी का नंबर डायल किया और उस नंबर पर ही बात करने लगा क्रमशः।